का नाम रागंतक भक्ति है, वह कृपा मार्ग है, और वह कृपा मार्ग केवल कृपा के द्वारा, कृपा मुक्ति के द्वारा ही दिया जा सकता है। शांत में जरा लोभी है, शांत वो कृपा नहीं देते। मुक्ति दराज कर रहे मन भक्ति योगम ठीक स्थान करते रहते हैं, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते हैं। परंतु श्री किशोरी जी अत्यंत अत्यंत कृपालु हैं, परंतु श्री किशोरी जी और किशोरी जी का जो निज परकर है वहां कृपालु होते हुए भी वहां पर भी रेवड़ी बच्ची रहती हैं जो निकुंज में है, उनको ही वो रस प्रदान किया जा रहा है, किसी दूसरे को नहीं दिया जा रहा है। परंतु श्रीमद महाप्रभु, महाप्रभु का परकर ऐसा रहा जिसने जो अपात्र थे उन अपात्रों को पात्र भी बनाया और उनको वह रस भी प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि अपात्र को रस दे दिया, पात्रता प्रदान पूर्वक वे रस प्रदान करते हैं। पात्र पात्र विचारण न करते, यह बात अपनी जगह सही है, परंतु अपात्र को रस नहीं दिया जाता है। श्री महाप्रभु और उनके परकर की यह विशेषता रही है कि वे अपात्रों को पहले पात्र बना देते हैं कृपा के द्वारा, और कृपा के द्वारा पात्र बना करके रस प्रदान कर देते हैं। ये पता नहीं लगता कि कब तो कृपा पात्र बनाया और कब कृपा की, पात्रता कब दी और कृपा कब दी। जैसे सत्पत्र भेदन न्याय से कोई 100 पत्रों को कमल के एक साथ रख ले और सुई से छेदे, तो उनमें क्रम तो है कि पहला पत्र पहला जो मछली है वो पहले छिदी होगी, जो नीचे वाली है वो बाद में छिदी होगी, उनमें क्रम तो है, पंत क्रम होते हुए भी क्रम दिखता नहीं है। ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु और श्री रूप गोस्वामी की कृपा की ये स्थिति है कि उसमें क्रम होते हुए भी कि पहले पात्रता प्रदान करेंगे, फिर पात्रता के अनुसार पात्रता निष्ठा प्रदान करेंगे, भक्ति भक्ति प्रदान करेंगे, फिर भक्ति में निष्ठा प्रदान करेंगे। ये क्रम है, पंत क्रम होते हुए भी वे यह क्रम दिखता नहीं है। श्रीमद महाप्रभु की एक श्री रूप गोस्वामी की एक बहुत बड़ी देन है। रूप ने जो कुछ भी दिया उसे जो विशुद्ध रूप से बौद्धिक प्रकर था, बुद्धिजीवी जो प्रकर था तथाकथित, वह बुद्धिजीवी प्रकर को भी बड़े संकोच की प्राप्ति हुई और उसने भी एक क्रमिक पद्धति को प्राप्त किया। श्री रूप गोस्वामी पास साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति और भाव भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति की जो पद्धति निरूपण करते हैं वह पद्धति संपूर्ण शास्त्र को अपने भीतर आत्मसात कर लेती है और एक क्रम स्थापित करती है। यह क्रम स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। रसोपासना की जब कृष्ण रति की प्राप्ति हो गई, आदो शुद्धा तत्पाद तत्व भजन क्रिया तत्व अनर्थ निर्शिष्ट तत्व निष्ठा तत्व रुचि आसक्ति भाव, जब प्रेम की प्राप्ति हो गई, जब भाव की प्राप्ति हो गई, तब भाव की प्राप्ति होने पर रति की प्राप्ति होने पर तब जो रस की प्रक्रिया है वह रस की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परंतु एक समस्या थी कि जो व्यक्ति इस पूरी पद्धति से नहीं गुजरा है वह भी यदि विरक्त मार्ग को पढ़ता है, भावी स्नातक को पढ़ता है तो उसे आनंद की प्राप्ति क्यों होती है, उसे चिन्मयता की भी प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि विदग्ध स्नातक को पढ़ते समय और अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ते समय दोनों के पढ़ते समय उसके हृदय की भाव स्थिति एक ही रहती हो तो बात नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ते समय उसकी भाव स्थिति एक है और श्री विदग्ध माधव को पढ़ते समय उसके हृदय में भी कहीं सिद्धांत बोध, उसके हृदय में भी कहीं संबंधित ज्ञान पूर्वक उस रस का अन्वेष, रस का परवेषण उसके हृदय में भी होता है। ऐसा क्यों होता है एक समस्या थी। रूप गोस्वामी जी इस समस्या का समाधान करते हैं। जहां रसाभास प्रकरण को विपक्षण करते हैं, रस्याभास प्रकरण को, वहां पर कहते हैं कि ज्ञानी जनों को यदि संतों का संग प्राप्त हो, रसकों का संग प्राप्त हो, या रसकों के ग्रंथ या काव्य का दर्शन हो, तो उन ज्ञानी जनों में प्रतिबिंब कहीं उदय हो जाता है। यदि संसारी जन जिनके हृदय अभी विषयों में ही आ सकते हैं और निर्मल नहीं है, यदि वे गोस्वामी जी के ग्रंथ को पढ़ते हैं, वे यदि किसी भक्त ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उनके हृदय में भी जो भक्ति का संचार होता है, उन्होंने भक्ति का साधन नहीं किया है। साधन की दृष्टि से जो उनके व्यक्तिगत जीवन को देखा जाए तो वे ठंडन बाल मरण को पाले। उन्होंने कभी नियम से सोलह माला भी लेकर के भी कभी नहीं बैठे, पर फिर भी यदि भक्ति ग्रंथों का, आचार्यों के ग्रंथों का, यदि रस ग्रंथों का भी आस्वादन करते हैं तो उनको भक्ति की प्राप्ति क्यों होती है? इसका कारण है कि कहीं रसिकों की कृपा ग्रंथ के माध्यम से उनके ऊपर भी बरस रही है और उनके हृदय में कहीं कृष्ण रति की छाया उत्पन्न हुई। ज्ञानियों में प्रतिबिंब और सामान्य जो अपनदात्मक जो जीव है उनके हृदय में कहीं रति की छाया उत्पन्न होती है और वह रति की छाया भी किसी भाग्यशाली के हृदय में उत्पन्न होती है जिसको श्री प्रभु कृपा करना चाहते हैं उसके हृदय में उत्पन्न होती है। और वह सामान्य व्यक्ति जिसने साधन के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयत्न नहीं किया है वह भी कहीं आगे बढ़ जाता है, वह भी उस रस का आस्वादन प्राप्त करता है। प्रतिबिंब और छाया में अंतर है। प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के समान होता है। दर्पण में भंगिमा दिखती है, आकार भी दिखता है और भंगिमाएं भी दिखती है प्रतिबिंब, परंतु छाया में केवल आउटलाइन ही दिखती है, उसमें रंग नहीं दिखता है। उसमें अंग का जो विन्यास है वो अंग का सामान्य बाहरी आकार तो दिख जाएगा परंतु उसमें गहराई के साथ में अंग विन्यास जो है वो परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। क्योंकि ज्ञानी बड़ा प्रयत्न कर रहा है, उसने अखंड प्रयत्न तो किया है। अधिकारी को विधवता दीप वेद वेदांग अखंड वेदा तो अपने जन्म जन्मांतर एवं काम निषिद्ध वर्जन को रखकर नित्य नैमित्त कर्मानुष्ठान तैयार नितान्त निर्मल स्वांत है। वो नितान्त निर्मल स्वांत तो हुआ है तो उसके हृदय में कहीं संतों की कृपा के, कृष्ण की कृपा के द्वारा कहीं प्रतिबिंब हो सकता है। श्री समकाल जिस समय श्री वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं और वैकुंठनाथ के चरणारविंद की सत्यारविंद मकरंद सत्यारविंद मिश्र तुलसी मकरंद भाई अंतर्गत स्वविवरण सकार तेजम संक्षोभ मकर दिशा अपचित पंगो, तो उनके भी हृदय में कहीं संक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानियों के हृदय में भी भक्त संघ से या भगवत संघ के कारण कहीं छाया आती है, उनमें भी कहीं रोमांच संपत्ति उनको भी प्राप्त होती है। तो ये एक समस्या रही कि भक्ति काव्य तब तो केवल भक्तों के लिए ही हो जाएगा, किसी दूसरे के लिए नहीं है, और दूसरे उसका आस्वादन कैसे करेंगे? श्री रूप गोस्वामी जी ने इन समस्याओं को बड़ी बारीकी से पहचाना और इन समस्याओं का समाधान भक्ति की जो पद्धति जैसा क्रमिक विवेचन श्री रूप गोस्वामी पाठ करते हैं, कर्म की क्या स्थिति है, ज्ञान की क्या स्थिति है, भक्ति की क्या स्थिति है और इनको हम कैसे कहीं भक्ति में संगमित कर सकते हैं, ये जो क्रमिक था, क्रमिक विवेचन था, उस क्रमिक विवेचन को वो जो सोपान है वह सोपान शास्त्रोद्धार पूर्वक वो जो पद्धति वो श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रकट की कि भाई ये भक्ति कहीं आरोप की भक्ति है, दूसरी भक्ति कहीं संग सिद्धा है, तीसरे प्रकार की जो भक्ति है वह स्वरूप सिद्धा है, वह शुद्धा है। एक भक्ति कहीं गौणी है, दूसरी भक्ति कहीं मिश्रा है, तीसरी भक्ति शुद्धा होकर के विराजमान है। तो ये जो क्रम है, कहीं भगवत भक्ति ज्ञानी और भोगियों को, कर्मियों को ज्ञान का फल मोक्ष, कर्म का फल भोग मात्र प्रदान करके अपने आप को गौण बना लेती है और गौण बना करके गौण फल प्रदान करके ही स्वयं अंतर्धान हो जाती है, अपने वास्तविक प्रभाव को प्रकट नहीं करती। वो जो स्थिति है वह एक कर्मकांडी की स्थिति होगी, ज्ञानकांडी की ज्ञानी की स्थिति होगी। तो भक्ति के अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त करेंगे और भक्ति का फल, भक्ति मोक्ष प्रदान करके अपना मूल फल श्री गोविंद चरणारविंद की सेवा, युवक चरणारविंद की सेवा प्रदान नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि हमको केवल छाछ नहीं चाहिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो छाछा चाह रहे हैं, केवल भोग चाह रहे हैं, भोग चाह रहे हैं, मानो दही को मसने के बाद में केवल छाछ चाह रहे हैं कि भाई माखन निकाल लो, ये हमको नहीं चाहिए, हमको केवल छाछ छाछ चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमको माखन तो चाहिए पर साथ के साथ में छाछ भी चाहिए, दोनों चीजें। वे ही मिश्रा भक्त आदो जिज्ञासा नाथी ज्ञानी सर। एक और हमारी आर्थिकता दूर हो, हमको अर्थ की प्राप्ति भी हो, साथ के साथ में कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हो, कृष्ण सेवा भी प्राप्त हो, कृष्ण सेवा के लिए संपत्ति भी प्राप्त हो। ये मिश्रावती के जो स्वरूप हैं उनको प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आम तुल्य कृष्णानुशीलनम, हम तो कुछ नहीं चाहेंगे, अन्य अभिलाषता त्याग करके केवल हम भक्त को ही ग्रहण करें, दूसरी अभिलाषा कहीं है ही नहीं। अब दूसरी अभिलाषा नहीं है इस भक्ति में भी, जो परम परम रस्मय की स्थिति है वो रस्मय स्थिति श्री रूप गोस्वामी एक क्रम के द्वारा स्थापित करते हैं। श्री रूप गोस्वामी का जो सिद्धांत विवेचन है वह सिद्धांत विवेचन इतना व्यापक है, सर्वग्राही है कि उसमें सबको अपने सिद्धांत का समन्वय प्राप्त हो जाता है, अपने सिद्धांत का आधार प्रदान प्राप्त हो जाता है। कौन सा ऐसा विवेचक होगा जो भक्ति के विषय में विवेचन करने के लिए बैठे और रूप गोस्वामी की उपेक्षा कर जाए। रूप गोस्वामी के काव्य, रूप गोस्वामी का जो सिद्धांत विवेचन है वह सबको आधार प्रदान करता है। जो वैकुंठ उपासक हैं उनको भी आधार प्रदान करता है, उनका भी विवेचन रूप गोस्वामी जी ने किया। जो विभिन्न अवतारों की उपासना करने वाले हैं उनका भी विवेचन कर रहे हैं। श्री कृष्ण समाराधना जो करने वाले हैं उनका भी विवेचन कर रहे हैं। आनुकूल्य कृष्णाम शुरूनम, जहां कृष्ण शब्द दिया वह बड़े व्यापक अर्थ में दिया। जी को समझ के वहां पर जो टीका है वो कृष्ण शब्द का तात्पर्य केवल तमाल श्यामल कृषि यशोदा संबंध है, पर ब्रह्म श्री कृष्ण में ही के लिए ही वहां पर कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कृष्ण शब्द का प्रयोग वहां श्री कृष्ण और कृष्ण के अन्य जितने भी अवतार हैं सबके लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आनुकूल्यन कृष्णाम श्रीनंदन का तात्पर्य केवल नंदनंदन कृष्ण ही नहीं, कृष्ण कहने का तात्पर्य वहां नृसिंह भी हो जाएगा। जो नृसिंह आराधना करने वाले हैं भक्ति की इस परिभाषा में, अन्य अभिलाषा शून्यम में इस परिभाषा में वे भी आ जाएंगे, उनको भी ग्रहण करेंगे। तो श्री नंदनंदन से लेकर के अंतर्यामी पर्यंत उत्तर दल जो अंतर्यामी है वहां तक सभी कृष्ण शब्द के भीतर ही समाहित हो जाते हैं। तो कृष्ण का तात्पर्य केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण और कृष्ण के अन्य जितने भी वैभव प्रारभ आवे जितने भी अवतार हैं उन सबों का को भी आत्मसात किए हुए या कृष्ण शब्द बहुत व्यापक अर्थ में गिराएंगे। तो रूप गोस्वामी बात का ये जो विवेचन है यह विवेचन सबके लिए एक आधार प्रदान करता है। कोई भी उपासक हो श्रीमद इसी पद्धति में बस एक बात की ओर इन विद्वजनों का जरा सा ध्यान आकर्षित करूंगा। श्रीमद वृंदावन में बड़ा जोर है, बड़ी दुंधवी निनाद पूर्वक एक बात की का गायन किया जाता है, हम सब वैष्णव हैं और वो है नित्य विहार। श्री उज्जवल निर्मणि में इस नित्य विहार की जितनी भी ये धारणाएं हैं इन संपूर्ण धारणाओं को एक आधार प्रदान करते हुए श्री भक्तिसामे श्री रूप गोस्वामी पाद पूजा कर रहे हैं कि अजन्यस्तु स्वयं सिद्ध स्वरूपम भाव उच्यते। जिसको हम नित्य विहार कहते हैं, जिसको हम सहज सुख कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रदायों ने अनेक सुखों में सहज सुख जो है उसको प्रधान करके श्रीमन हरिदास देवाचार्य जी ने महावाणी जी में सहज सुख, श्री श्री भक्त जी ने श्री आदवाणी में सहज सुख उनका एक प्रकरण है कि भाई ये नित्य सेवा, सेवा सुख, फिर सेवा सुख के बाद में उत्साह सुख, उत्साह सुख के बाद में फिर सहज सुख, फिर सहज सुख के बाद में फिर सुरत सुख, और सुरत सुख के बाद में फिर सिद्धांत सुख। श्री महावाणी जी में या वृंदावन की जो एकदम निकुंज की रस पद्धति है उनमें ये पांच सुखों का जैसे विवेचन किया। अब वहां पर आधार जो है वह सहज सुख है कि श्री युगल सरकार की ऐसी प्रीति जिसमें कोई कारण नहीं है, निष्कारण जो प्रीति उस निष्कारण प्रीति का भावन किया गया। पंच शुरू को सुन बाद उसके लिए भी एक आधार प्रकट करते हैं कि अजन्यस्तु जो किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न न हो, अजन्यस्तु स्वयं सिद्ध जो स्वतः सिद्ध हो, ऐसे स्वभाव को, ऐसे भाव को स्वभाव कहा गया और वह स्वभाव ही सहज है, सहज सुख। क्योंकि कृष्ण भक्ति के उत्पन्न होने में या कृष्ण प्रेम के उत्पन्न होने में कहीं अभियोगा विषयतः संबंधात अभिमानतः सात सप्तम विशेषत्व उत्तमत्व यथोत्तरम। श्री युगल सरकार में जो प्रीति है वह प्रीति किसी कारण को देखने वाली नहीं है, वह सहज है। उस प्रीति में कोई कारण नहीं है। जो कहीं दौत्य को जो कारण बताया गया, अभियोग का तात्पर्य है दूती को भेज करके, पत्र का भेज करके श्री पूर्व रामलीला में जैसे श्री ललिता जी श्याम सुंदर के पास में जाती है, प्रिया जी की जो माला, उस माला को ग्रहण करके प्रिया जी ने गुनिया माल भिजवाई है लाल जी के पास में, श्याम सुंदर के पास में, श्याम सुंदर उस माला को अपने श्री हस्त में ले रहे हैं, मन में अपूर्व रूप से उल्लास है, पंत पास में मधुमंगल बैठे हैं, इसलिए श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले रागेण मापे तो कठोरम सुपुत्र मापे मोह उदीन मालिन्यम युवती नाम हृदय नहीं गुंजाहार विक्षम। श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले ये जो मोतियों की माला है, ये गुंजा माल है, ये रागेण लाल है परंतु कठोर है, गुण भी है तो दोष भी है, राजन मपे तो कठोरम सुवृत्त मपे मुंह उदीर मालिन्यम, ये गोल तो है परंतु मालिन्य को भी प्रकट करने वाली है, इसमें काला धब्बा भी है। अतः ये गुंजा जो है वो गुंजा कहते हैं, बोले युवती नाम एवं हृदय युवतियों के हृदय के समान है, नहीं गुंजा हार मिच्छामि, हम गुंजा हार को नहीं चाहते हैं। युवतियों का हृदय जैसे रागी होने पर भी कहीं कठोरता को धारण किए हुए है, ऐसे अभी ललिता तुम जो अपनी सखी की ये माला लेकर के आई हो हमारे पास में, ठीक है तुम्हारी सखी के पास में कभी हमारा चातुराक्षित दर्शन भी नहीं हुआ है, अभी तो नैन भी नहीं मिले हैं, कभी चौनजरा भी नहीं हुआ है, जाने उनकी प्रीति कहाँ है, हमको ये गुंजाल नहीं चाहिए। और श्री श्याम सुंदर अपने कंठ में पहनी हुई ललिता जी ने वो गुंजा माल श्याम सुंदर के कंठ में जो धारण कराई थी, श्री श्याम सुंदर ने अपने कंठ में पहनी हुई कोई रंगन माला उतार करके बदले में श्री ललिता जी को प्रदान कर दी। गुंजा माल तो पहने रहे बड़े चतुर, इनकी चतुराई कोई ख्याल नहीं है चतुराई का। श्री प्रिया जी ने प्रेम चिन्ह के रूप में जो गुंजा माल भेजी थी उस गुंजा माल को तो लाल जी धारण किए हुए हैं, परंतु रंगन माला जो पहने हुए हैं उस रंगन माला को उतार करके श्री ललिता जी को दे दिया, बोले ले जाओ ले जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी गुंजा माला। और श्री ललिता तुरंत उसको ढांक करके रख लेती हैं। श्री प्रिया जी के पास में जब लौट करके आती हैं, यहाँ पर तो सब झूठाओं की भीड़ इकट्ठी हुई है, एक से एक झूठे, सब के सब झूठे। श्री ललिता दिखा रही है ऐसे जाने क्या हो गया, सखी पूछ रही है क्या बात हुई, अरे श्याम सुंदर ने वो गुंजा माल लिया नहीं, स्वीकार ठीक है नहीं, श्याम सुंदर ने क्या कहा। श्री ललिता मुख नीचा किए हुए बैठी हैं, श्री स्वामी कह रही हैं, बोले अकारुण्य कृष्ण यदि मई तवागत कथमिदम वृथा मारोदी कुर परमिमाम उत्तर कृति, बोले अरे सखे ये श्याम सुंदर मेरे प्रति अकरुण हो रहे हैं तो तू क्यों दुखी हो रही है, तू व्यस में रोए मत, देख मुझे कोई अपना अनिष्ट कार्य संपादित करना है, अतः मैं तुझसे अनुमति लेती हूँ। सखी जानती है कि सखी यमुना जी के पास में क्यों जाना चाहती है, इसमें छाती से लगा लेती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं सखी मैंने तो हंसी की थी, श्याम सुंदर तुझ में ही एकमात्र आप। तो अभियोग राग को उत्पन्न करने में कहीं अभियोग, कहीं दूती पत्र प्रेषण स्नेह चिन्ह उनका प्रेषण, इनको राग को प्रस्तुत करने में कहीं कृष्ण नाम श्रवण, इनको श्रवण करने से प्रीति उत्पन्न हो रही है, परंतु इससे भी बढ़कर के कृष्ण प्रेम उत्पन्न करने का दूसरा जो प्रकार है, उत्तम प्रकार जो है वह क्या है, अभियोगात विषय पर। अभियोग की अपेक्षा जहां और अधिक गाढ़ राग होता है वहां विषय से राग उत्पन्न होता है। कितना सूक्ष्मता के साथ पिछली जीव गोस्वामी को श्री रूप गोस्वामी पास इनका सैद्धांतिक विवेचन करते हैं, और काव्य रूप में भी काव्य श्री भक्तराम श्री विकट माधव में ललित माधव में भी जैसे उसकी विवेचना करते हैं, प्रयोगात्मक जो उसका स्वरूप दिखाते हैं वह भी अद्भुत। विषय का तात्पर्य है शब्द स्पर्श रूप रस गंध गोष्ठेन्द्र बल्लव सख्य समय कर्षद पंचेन्द्रियां न्यायालय। गोविंद रामत ने कहा, बोले श्याम सुंदर आज गोष्ठेंद्र आत्म बल्लभ मेरी पंचेंद्रियों को बर्बत आकर्षित करते हैं, और वो जो पूरी पद्धति रूप गोस्वामी जी से श्री गोविंद रामत में ली गई वहां पर कहीं कृष्ण नाम श्रवण करके कि चूड़ा आप अनुसंग तो श्रुत में दे तो नाम है अक्षर क्या अनुसंग में भी कभी कृष्ण नाम सुन लें तो श्री राधिका को प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो कभी नाम श्रवण करके शब्द रूप में, कभी चित्र फलक में रूप दर्शन करके, कभी श्याम सुंदर के अंग कांति से युक्त गंध जो है वो गंध का श्रवण करके, कि सुंदर प्रिय कुलपते बात गंध श्याम सुंदर की माला को श्रवण करके, कभी शब्द वेणुनाद जो है उन वेणुनाद को श्रवण करके प्रीति उत्पन्न होती हुई दिखाई, तो अभियोग की अपेक्षा यह और ज्यादा उत्तम कारण है। विषय पंच विषय शब्द स्पर्श रूप का गंध ये और भी अधिक सूक्ष्म कारण है। उससे भी अधिक सूक्ष्म कारण और उत्तम कारण क्या है? संबंध। संबंध श्री कृष्ण के साथ में हमारा संबंध है, वो संबंध ज्ञान जो है वह संबंध ज्ञान और भी अधिक सूक्ष्म कारण होता है। उससे भी अधिक बढ़कर के ज्ञान दिशा में नहीं जाएंगे, उससे भी बढ़कर के अनुमान का अनुमान जो है कहीं दंपति होने का अनुमान जैसे रुक्मिणी जी में है, उस अनुमान के द्वारा जो प्रीति उत्पन्न होती है वो और भी अधिक उत्तम होकर के विराजमान है। और सात सप्तक विशेषत्व और इनसे भी बढ़कर के प्रेम उत्पन्न का उत्पत्ति का जो कारण है वह है सप्तक विशेषत्व। अर्थात श्रीमद वृंदावन की शोभा का दर्शन करके, आकाश में देश अथवा तीन वस्तुओं का जो संघ, वह तीन वस्तुओं का संघ रसकों में सहज रूप से रस को उत्पन्न करता है। एक तो स्थिति, एक सजातीय वैष्णव और एक लीला स्थली का दर्शन। ये तीन वस्तु अनधिकारी में भी जल्दी से प्रीति उत्पन्न करते हैं। जब जन्माष्टमी आती है, जब तीज आती है श्रावण तीज, तो उल्लास अपने आप उमड़ पड़ता है। श्री किशोरी जो पढ़ा रही हैं तो अपने आप मुंह से फूट पड़ता है राधे झूलन पढ़ारो जो काई बढ़ सकता है। तो तिथि जो है वह तिथि या समय लीला को अपने आप स्फुरित करता है। इसी प्रकार सजाती वैष्णव का जो संग होता है, रस और रसिक जनों का, इन रसिक जनों का जब संग किया जाता है तो इनका दर्शन हृदय में रति को, हृदय में प्रीति को सहज रूप में उत्पन्न कर देता है। लीला स्थली का दर्शन किया जाता है तो लीला स्थली का दर्शन भी सहज में ही प्रीति को उत्पन्न करता है। साधारण शब्दों में कहें तो देश, काल और पात्र, ये तीनों वस्तुएं सहज ही प्रेम को उत्पन्न करती हैं। तो सात सतत विशेषत्व जो सतत विशेष हैं, वे विशेष कहीं अपूर्व रूप से श्रीमद वृंदावन धाम तदोदराजकोकरी मुखम विश्वा कुमदवंत मखंड मंडलम आकाश में चंद्रमा उत्पन्न हुआ, श्री श्याम सुंदर वृंदावन की शोभा का दर्शन कर रहे हैं शरदोत्फुल्ल मल्लिका, और शरदोत्फुल्ल मल्लिका का दर्शन करके दीक्ष रम को मन चक्र रमण करने की अभिलाषा आपके हृदय में उत्पन्न हो जाए। धाम धामी के हृदय में लीला को स्फूर्त कराए, श्री प्रिया जी के हृदय में भी लीला की स्फूर्ति कराए। तो यह और भी अधिक सूक्ष्म कारण होकर के विराजमान, और इससे भी अधिक सूक्ष्म कारण क्या है बोले, ये सब कारण तो केवल दिखाने के हैं, इससे भी सहज सूक्ष्म कारण है वह है सहज प्रीति स्वभाव। इस स्वभाव का ही नित्य विहार में सबसे ज्यादा बल है, सबसे ज्यादा प्रधानता। इसकी समाराधना करने के लिए विराजमान है जिस स्वभाव में, फिर ये जितनी भी वस्तु है ये केवल दिखाने भर के कारण है। श्री प्यारी जी का, प्यारी जी का लाल जी के साथ में जो प्रेम है वह प्रेम किसी कारण से नहीं है, वह प्रेम स्वाभाविक रूप से ही विराजमान है। ये सब वस्तुएं तो केवल दिखाने के लिए उपचार मात्र है। सत्यतः ये कृष्ण से प्रेम कराने या श्याम सुंदर का प्रिया जी से प्रेम कराने का कारण नहीं है, बल्कि सहज ही वह प्रेम विराजमान है, ये तो केवल दिखाने की है। अतः श्री नांदी मुखी जी से विदग्ध माधव में श्री पौर्णमासी जी कह रही हैं, नानी मुखी जी ने पूछा बोले सखी हे भगवती, मैंने सुना है कि आप श्री राधिका का श्याम सुंदर के साथ में संगम कराओगी। रंगेन संगमयता निज पौर्णमासी, पौर्णमासी जो है वह संगम कराएंगी, आप संगम कराओगी। पौर्णमासी जी कह रही हैं, नहीं नहीं, ये तो केवल कहने सुनने की बात है, श्री राधिका के हृदय में विराजमान सहज प्रीति ही इन दोनों के मिलन में कारण है, मैं तो केवल निमित्त मात्र बन रही हूं। तो ये जो सूक्ष्मता है, इस सूक्ष्मता को श्री रूप गोस्वामीपाद ने पहचान, श्री रूप गोस्वामीपाद की एक बहुत बड़ी देन है, और वो देन रही कि सहज प्रीति का निरूपण करते हुए भी चतुर्पक्षी भाव की महिमा। मैं उन्हीं के शब्दों को तो कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, चतुर्पष्टी भाव। श्री ब्रज महाराज ने ललित महाराज ने अंत में से जब राहा कृष्ण मिलन हो रहा है, द्वारका में भी सारी महर्षिगण जो है उनका कृष्ण के साथ में मिलन हो रहा है, श्री राज का मिलन हो रहा है, वहां पर यदि कोई सखी पूछती है, श्री ललिता पूछती है, बोले अभी सखी आह प्यारे के साथ में तुम्हारा मिलन हो गया, और मैं तुमको क्या और तुम्हारी सेवा करूं। तो उस ग्रंथ के अंत में वहां पर श्री किशोर जी कह रहे हैं, बोले यद्यपि प्यारे हमको प्राप्त हो रहे हैं, परंतु मेरा मन चतुर्पक्षी भाव के लिए चंचल हो रहा है। तो ये जो चतुर्पक्षी भाव है, वार्यमानता पूर्वक जो प्रीति है, उस वार्यमानता पूर्वक प्रीति को जिस उल्लास के साथ में और जिस उत्कर्ष के साथ में, जिस निर्दोषता के साथ में श्री रूप गोपालपाद ने प्रतिपादन किया, जिसमें किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रहने दिया, ऊपर से देखने में वार्यमानता होने पर कहीं रोक टोक होने पर परकिया प्रेम में कहीं दोष दिखता है, परंतु जिस निर्मलता के साथ में उसकी निर्मलता को की स्थापना करते हुए जैसे उसका प्रतिपादन किया गया, और साधकों के लिए जैसे उसे परम उपास्य करके श्री रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया, वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसने गौड़ीय वैष्णव उपासना पद्धति को एक अलग पहचान दी। जहां पर नित्य विहार के साथ में कोई आपत्ति नहीं है, नित्य विहार के साथ में कोई विरोध नहीं है, परंतु विरोध न होते हुए भी एक नई पहचान उसे प्राप्त हुई, एक नई आइडेंटिटी प्राप्त हुई चतुर्पक्षी भाव पूर्वक जहां अनुसार कराते हुए। अतः श्री अष्टकालीन लीला पद्धति में स्मरण मंगल स्तोत्र में श्री रूप गोस्वामी पाद जो स्मरण की पद्धति रूपा कर रहे हैं, उसमें जो मंजरी है, जो प्राण सखी और नव सखी है, जो अखिलाधिपत जो प्राण सखी है, उनके लिए यह एक सबसे बड़ी सेवा है कि प्रातः काल के पूर्वाह्न के समय श्री किशोरी जी का सूर्य कुंड पर सूर्य पूजन के लिए अलंकार कराना, और प्रदोष में श्री प्रिया जी के का रात में अवसार कराना, यह अवसार रसिक जनों की गौड़ी जनों की सेवा में एक महत्वपूर्ण सेवा बन गई, एक प्रधान सेवा बन गई चतुर्पक्षी भाव के कारण। और उसके द्वारा पूरी रस पद्धति जो है वह रस पद्धति कहीं बहुत गहराई के साथ में उन्होंने प्रस्तुत की। शुरू में बात का एक अपूर्वता जो रही, महाराज जी ने आदेश प्रदान किया था, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, जल्दी से उसका समाहार करूंगा कुछ बातें कहकर के। श्री रूप गोस्वामी पाद का एक अपूर्व जो योगदान रहा, वो अपूर्व योगदान ये रहा कि वे श्री प्रिया जी को श्री ब्रज गोपीचारणों को ब्रज के बाहर नहीं करते, परंतु कहीं कादाचित की लीला में उनको छाया रूप में एक अंश रूप में श्याम सुंदर के साथ में मिलन भी प्राप्त कराते हैं। और कैशोर गोपकन्या आस्था यौने राजकन्या का ये जो पद्धति है, इस पद्धति को शास्त्र में कहीं स्कंद पुराण में जब आती है एक लाइन कहीं दी गई, और उस लाइन को उन्होंने जैसे पल्लवित किया, वही बहुत बड़ा योगदान था। ललित माधव की जो पूरी कादाचित की लीला की पद्धति, वह अपने आप में ऐसी है जो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। रागानुगा भक्ति मार्ग में जो प्रीति, उस प्रीति में श्री किशोरी जी के अनुगत होकर के हम सेवा कर रहे हैं, किशोरी जी की प्राण सखी होकर के नव सखी होकर के हम सेवा कर रहे हैं, साधन सिद्धागण भी शुद्ध होकर के सेवा करते हुए विराजमान है, परंतु उस सेवा करते हुए भी अन्य रसों का अपने रस में जैसे अन्य रसों को जैसे उद्दीपन बना दिया जाए, वो जो पद्धति है यह रूप गोस्वामी जी की एक अद्भुत पद्धति, एक बहुत बड़ा योगदान। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि बात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी है, स्पष्ट है, तो हमारे वृद्ध की जैसी रीति है तदनुसार ही रस की रीति है। वृद्ध की लोकपत रीति यह है कि गोपी मैया के आगे श्याम सुंदर से नहीं बोलती, ब्रज की रीति कुछ ऐसी ही है, परंतु सखाओं के आगे बोल लेती है। अतः सख्य रस मधुर रस का सहयोगी रस है, बासल रस मधुर रस का विरोधी रस है, पांच विरोधी रथ होते हुए भी उस विरोधी रथ को कैसे रथ का उद्दीपन बनाया जाए, यह एक अद्भुत है। कहीं दामोदर लीला का अनुकरण हो रहा है रास में, परंतु रास में दामोदर लीला का अनुकरण भी मूल जो रथ है उस मूल रथ का सहयोगी रथ ही होकर के विराजमान होता है। वहां पर इस बात पर बल नहीं है कि मैया बात्सल्य के कारण कृष्ण को भाग रही है, वहां पर इस बात पर इस बात को फोकस ज्यादा किया गया है कि आहा मेरे प्यारे कृष्ण ऐसे प्रेम वश हैं कि उनको मैया भाग लेती है। कृष्ण की प्रेम वश्यता पर और वह प्रेम वश्यता रथ का उद्दीपन बनकर के विराजमान हो जाती है। अतः जो विरोधी रथ है उनकी लीलाओं को भी सुनते हैं। श्री किशोरी जी ऐसा नहीं है, सखी जाती है नंद भवन में, मैया कन्हैया को जैसे लाल लड़ा रही है उनको भी सुनती है और सुनकर के किशोरी जी के पास में आकर के जिस समय कहती है किशोरी उन बात्सल्य श्री स्वामी श्री नारायणी उन बात्सल्य की लीलाओं को भी श्रवण करती है, परंतु श्रवण करती है अपने भाव के अनुरूप और उसमें कृष्ण की सर्वप्रियता का जो गुण उस सर्वप्रियता का गुण इनके हृदय में इनके प्रेम को ही और अधिक पुष्ट करने वाला होता है। तो बात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी नहीं बनता है, वह श्रृंगार रस का अपने रस का सहयोगी होकर के ही विराजमान हो जाता है। तो अनेक अनेक जो गुत्थियां थी उन गुत्थियों को श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से सुलझाया, उन गुत्थियों को सामने प्रकट किया। जो समृद्धमान संयोग उस समृद्धमान संयोग को जैसे ललित माधव में प्रकट किया और किलकिंचित भाव को मुख्य भाव रहा, रस का एक आधारभूत भाव रहा, उस किलकिंचित भाव को जैसे दान के कौमुदी में प्रकट कर रहे हैं जिसमें उत्कंठा की प्रधानता है। यो तो सारे भावों का रस है, रसाला जो है उसमें आम भी है, उसमें काली मिट्टी भी है, उसमें दही भी है, उसमें मिश्री भी है, उसमें सारे भाव भाव हैं, परंतु भाव होते हुए भी जैसे प्रधानता दही की ही है रसालन, ऐसे ही प्रधानता यहाँ पर उत्कंठा की ही। तो इस प्रकार अनंत अनंत रसों को प्रकट करते हुए वे उन रसों का परमेश्वर भी करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पास जहाँ बौद्धिक जो समुदाय है उस तो बौद्धिक समुदाय को एक शास्त्रोद्धार पूर्वक एक सरणी प्रदान करते हैं और रस अनुभूति की एक शास्त्रीय प्रक्रिया वे प्रस्तुत करते हैं। केवल प्रक्रिया जानना ही बड़ी वस्तु नहीं होती है, रस में निष्ठा होना बड़ी वस्तु है, रस ज्ञान बड़ी वस्तु नहीं है। अतः रस में निष्ठा उत्पन्न कराने के लिए वे स्वयं रस का विवेचन करते हैं, लीला ग्रंथों में उन रस का गायन करते हैं और रस का गायन ही नहीं करते हैं, स्वयं अपने आचरण के द्वारा उसे सुपुष्ट भी कर देते हैं। एक कंठा में एकाम प्रधान है, एक कंठा लेकर के विराजमान है, रोलम में भिक्षा करते हुए विचरण कर रहे हैं, परंतु रोलम में भिक्षा करते हुए भी विचरण करते हुए जैसे वैराग्य पूर्वक वे रस का सेवन कर रहे हैं, वह सेवन अपूर्व अपूर्व होकर के विराजमान। तो इस प्रकार स्वयं साधन करके दूसरों को पद्धति दिखाना, रस का आस्वादन करते हुए उस रस में सबको निष्णात कर देना और रस की एक बौद्धिक जो स्तर, उस बौद्धिक स्तर और प्रक्रिया को भी स्थापित कर देना, ये तीनों ही जो कार्य थे, एक आचार्य रूप में रस की स्थापना, एक रसिक भक्त के रूप में उस रस का सुकवि के रूप में नित्य परकर के रूप में श्री महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप के रूप में महाप्रभु जो अनुभव कर रहे हैं उस अनुभव को योग की त्यों प्रकट कर देना कि प्रिय स्वयं कृष्ण सख कुरुक्षेत्र मिलता है, महाप्रभु के हृदय को कहीं प्रकट कर देना और उस हृदय को प्रकट ही नहीं कर देना बल्कि उस हृदय को सहेज कर रखने का जो जीवन पद्धति है, जो रहनी है, उस रहनी को भी सामने प्रस्तुत कर देना। तो रहनी की दृष्टि से भी, रस की दृष्टि से भी और विचार की दृष्टि से भी श्री रूप गोस्वामी पाद का जो अपूर्व दान रहा आज तिथि के ऊपर, उनकी तिथि समाराधना के अवसर पर श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणारविंद में यही वंदना कर रहे हैं कि आप उस दान को में कहीं हमको भी जीना सिखाएं। केवल ज्ञान निष्ठा नहीं, केवल रस का ज्ञान नहीं, बल्कि रस की निष्ठा उनकी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगी, किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। अतः सुनी आखिर थे साधु मुखे बोले सर्वजन रूप कृपा मिले युगल चार, सुना है कि आपकी कृपा से ही युगल चरण मिलते हैं, अतः बस आपके श्री चरणारविंद में ही वंदना कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही भी अब बोल गए महाराज जी के प्रेरणा से जो त्रुटि बनी है महाराज जी उनको शुद्ध करेंगे, संशोधित करेंगे।
की कमी नहीं थी, भाव को पता था। मैं सोचा था जो इन लोगों से भूमि पर बैठी मन बात कर रहे हैं, तो ये किसी के बस की बात नहीं मन बात कर रहे। ये भक्ति भी अपनी भाषा में भक्ति की मुझे कर सकते हैं, कहा मौका अगर अभी नहीं जाने प्रस्तुत करना जिसे सबसे प्राथमिक पद नहीं है और बहुत प्राथमिक मैं समझता हूँ कि यह समझ नहीं कर जब तक कि कोई कोई आधार नहीं है इसका, वैष्णव का धर्म नहीं है और उसको सुनने उद्योगी बन इत्यादि ग्रंथ माधव इत्यादि प्रत्याशी इत्यादि का जिसने कभी उसके अनुभव नहीं किया है या वैष्णव का धर्म नहीं किया है और विवेकन को महिला मंडलों के लिए बड़ी चीज ये मुश्किल है। कैसा सुंदर शिला इत्यादि का विचार कर ऐसे उनके काफी संबंध में उन्होंने बोला तीन प्रकार के तत्वों का विवेचन सूक्ष्म उन जीविकाओं का परम पद्धति रूप प्रशाली जो अपने सामने से लोग बने हुए जो व्याख्याए हैं उसका बहुत ही गंभीर उसको समझना नहीं चाहिए। तो मेरा सोचा था कि लोगों को कहूँ तो नीचे बस चुका अभी हम लोगों के सामने हमारे गोविंद वैष्णव संप्रदाय के
लक्ष्मी
नारायण महाराज का उपस्थित है। यदि हमारे संप्रदाय के एक प्रधान अर्थविवेचक जैसे हैं वैष्णव हैं अभी आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसी से आप मैं इसे निवेदन करता हूँ कि शुरू को जाने के लिए सुदक्षी चरण में अपने विचारों की पुष्पांजलि कर भाषा भी कुछ बहुत असल में हम लोग पता चले उनका जो जाति वो बहुत गंभीर भाव उत्पाद अभी बता तो बहुत है
अच्छा
बहुत है कोई बात
नहीं
कल बाकी काम कृपांजलि देने का हम लोग अवसर है और भी लोग आ रहे हैं नरेंद्र भी बड़े बड़े नेता हैं और बाकी प्रजोता हैं उनको आज हैं उन ठाकुर जी की संज्ञा में आपकी ने यही हिस्सा हिस्सा तय कर दिया नहीं जाना इसलिए आज पर यही पर हम सभा को नाम करते हैं
आपको इतना बल
मेरे लिए समापति महोदय आपके हर देश है आगे
ये तो प्यासे रह जाएंगे
मैं तो समाज समाज करते हैं ये लोग करके लिए चलते कई पान फट कर ये लोग हैं और मैं कवारी जो वृंदा उनका कुमार है उन्हीं की सेवा जाता हूँ आनंद जैसा कि अंत ने तुरंत आयोजन किया हमारा क्या के संबंध में कौन क्या करता है जो दुर्गे विवाद है तिरुपति के चंद महाभूति विजय करता है प्रयाग में स्वामी के हृदय में भक्ति करता एक रूप का संचार किया और उसकी आलिंगन उनकी अनुग्रह से उनके अंदर में ही खुल ऐसे नहीं होगा करने से नहीं होगा फिर सर्वगामी से भी देते हैं जैसे एक गुरु उसके हाथ पकड़ता और उसका उपलब्धि करके दे रहा है कि मैं गुरु चिंता करने को तब करती तो कैसे महाप्रे उनसे कहा ही नहीं बल्कि आलिंगन दान कर भक्ति रखता और यही उसी से नहीं माने तेलंगाना को भी अपने सारे परिवार से द्वारा कृपा करने के लिए कहा और उनके द्वारा कृपा संचार करके कहा कि मेरे भावनाओं को ये जरूरत हो तो उनकी विशेष कृपा से उसको शामिल किए कि चैतन्य महाप्रभु जो मनुष्य है मैं एक शब्द में तो उनका सुंदर पार्थिव भाव में स्थापना और उनकी ऐसी क्या है जो औपत्य भाव बड़े बड़े विद्वान हो शास्त्रकार लोगों ने भी तो औपत्य हो निर्णय माना है और उसको शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर बुद्धि के आधार पर सृष्टि कर उसको सर्वोत्तम स्थापित करने की साधारण बात नहीं थी जो उसको शामिल थी उन्होंने कहा है कि और सत्य भाव जरूर जैसा सात प्रकार लोग कर रहे हैं निर्णय नहीं है वो ज्ञान की न्यायों के लिए न्यायिकाओं के लिए समस्त सफलता के कारण और धर्म अपनी जो कृष्ण है और जहाँ वो लगातार उस रस को आस्वादन करने के लिए अवतरित हुए हैं या तो कहीं न्यायिक हुए हैं और नायिका उनकी अंतरंगा करते श्रीमती राधिका भी हुई है वो कभी भी या रोटियां नहीं है ये कभी भी गुस्साव नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है वो सब प्रेम के पानी वो क्यों कार्य क्या माँ एक दूसरे के लिए क्या छल करना छल लेना ये गोपियां पर क्यों करते हैं अपने सूचना के प्रति इंतजार ये तो ताकत कुछ नहीं देखा है। और फिर उन पंक्तियों में देखा जाता है कि जानकारी के प्रति कैसी लड़का है कि उनके प्रति कैसी हो। कृष्ण को खबर आ रहा है चंद्रावी के कुछ से राजा के उनको मिले या राजा को उनका मिलन था ये खबर है क्या होती इसका कारण इसका कारण राजा को भी ये नहीं होती नहीं उनको रूप पता नहीं है क्या होता है। ये सब प्रेम के विचार है अब साधित प्रेम के विचार है जिन्हें यहाँ पर मिलना मिलता इत्यादि जो रहे हैं ये सब प्रेम के विचार है इसमें थोड़ी भी छुट्टी नहीं है। जितने भी किस प्रकार के भाव हैं गोपियों में वो सब प्रेम के विचार है उसी भी एक छाया जगत में अंकित नहीं है विकसित रूप नहीं है। यदि वो ये भाव अपराधी जगत में न हो पापीय भाव न हो तो इस जगत में ये जो छाया है ये कैसे हो सकती है हमारा सदस्य देना है। इसलिए इस जगत से हम जो देखते हैं वो सब कुछ जगत से है और वो ये जो नायक हैं अपनी दशा में भी जो कृष्ण और उनकी जो नायिकाएं हैं श्रीमती राधिका जी और कितनी गहरियां हैं उनसे रूप से शामिल नहीं रहता है। कभी कभी रूप स्वामी आप सब तथा लोग उसको देख में ले किया है किसे किया है कहते हैं जो विद्या मान इत्यादि है वो मुख्य में कौन है जो कहते हैं तो कभी हरे बुद्धि के जहाँ लोग पार तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा पार्थिव भाव कैसे ठीक है ये तुम्हारे